नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जेतु शासनं अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
द्रव्य और क्षेत्र और काल और भाव के अनुसार भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर और भिन्न भिन्न द्रव्यों के समागम से आत्मा की परिणति भिन्न भिन्न हुआ करती है। वैसे महाराज कोई भी संग सहित आ जाए और तीन चार महीने रह जाए तो उतना आनंद नहीं आता कि जितना के चातुर्मास में साढ़े तीन महीने भी रह जाए तो भी ज्यादा आनंद आता है। ऐसा क्यों है तो धारणा इस प्रकार की हुआ करती है। तो वह प्रसंग मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूं। पर्व के दिन चल रहे हैं और पर्व करने से केवल दशलक्षण हुआ करता है। सांसारिक विषयों के विषय में हमेशा हमेशा चिंतन हमेशा हमेशा उसकी भूमिका को वृद्धिंगत करने के लिए प्रयास प्रयत्न चलते रहते हैं। कुछ ही ऐसे समय उपलब्ध होते हैं जिस समय में अन्यों को गौण करके आत्मा की बात चलती है। पाप क्या है पुण्य क्या है बंध क्या है मुक्ति क्या है अपना क्या और पराया क्या है इसके बारे में कुछ विचार विमर्श होता है। तो उन क्षणों में ऐसा लगता है कि वस्तुतः ऐसे ही क्षण हमारे जीवन के गुजरने का है। चक्रवर्ती था चक्रवर्ती भी अपने जीवन काल में ऐसे क्षणों को व्यतीत करने का प्रयास करते थे। तो एक ऐसा राजा जो सात्विक जीवन जीता था राजा और सात्विक जीवन हाँ बिल्कुल संसार में दो प्राणी हैं जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि महाराजा फिर इसके उपरांत दूसरे नंबर में राजा ये बात अलग है। जो महाराजा हैं उनके साथ उनकी चेतना ही रानी होती है और लौकिक राजा जो होता है वह अपने रानी। लेकिन ये ध्यान रखिए राजा और महाराजा ये दो ही ऐसे प्राणी हैं। महाराजा श्रीमन सर्वत्र जाना पूरी धरती के बारे में सोचता है और जब अपनी आत्मा के निकट पहुंच जाता है तो अपनी आत्मा की बात सोचता है। आचार्य कुंकुम देव के द्वारा प्रणीत समयसार चलता है मध्यान्ह में समयसार चलता है और प्रातःकाल मूलाचार चलता है। भीतर चले जाते हैं तो आत्मा की बात होती है बाहर आते हैं तो आत्मा के साथ और भी कई आत्माएं हैं, उनकी रक्षा की बात होती है। इस प्रकार की जीवन की चर्या होती है। और जब कभी भी कोई भी भव्य जीव आ जाता है, वह भी कुछ कह देता है कि हमें भी कुछ दे दो, तो उसके लिए भी देना पड़ता है। उसको भी कम से कम मार्ग ज्ञात हो, इसलिए रविवार के दिन एक मध्यान्ह में रख दिया है। वह महाराजा हुआ राजा, पर्व की जुनून की बात है। सब कुछ कार्यक्रम गुण करके अपने कार्य को, जो अपनी सत्ता है उस सत्ता को गुण करके, सत्ता में जो शासित हैं उनके लिए दिशा वो देना, और सबके लिए अपने अपने धर्म के अनुसार सब कुछ करना, उस आत्मा की बात करना, उस तत्व की बात करना, उस प्रभु को स्मरण में लाना जिन्होंने विश्व के लिए क्या दिया और क्या विश्व से दिया। सब लोग संतुष्ट है, यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हमेशा चलती है। राज की सत्ता एक प्रकार से बहुत अच्छी मानी जाती है। महाराज ये क्या बात कह दी आपने, गत रविवार के दिन तो 15 अगस्त थी और स्वतंत्रता की बात कही, और आज कह रहे हैं राजकीय सत्ता बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, राजकीय सत्ता बहुत अच्छी है। यदि प्रजा राजा का काम कर जाते हैं तो अच्छी है, नहीं तो एक राजा को नियुक्त करना बहुत अच्छा है। आप बात बहुत जल्दी उल्टा देते हैं महाराज, उल्टा था नहीं, आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाए इसलिए इस ढंग से बोला करता हूं। प्रजासत्तात्मक जब दिन कहा ही है तो प्रजा के हाथ में जब सत्ता है तो वही तो राजा है। ये बात अलग है, वो प्रजा बंदर जैसी है, तो चाहे सत्ता मिले या ना मिले, बात तो ये की राज की सत्ता आवश्यक है, एक नियंत्रण आवश्यक है। जहां नियंत्रण में नहीं है वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण होता तो और अच्छा है, और जहां पर नियंत्रण हो जाता तो व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 स्वर्ग है वहां तक व्यवस्था है, और 16 स्वर्ग के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर कोई व्यवस्था है लेकिन अव्यवस्थित्व नहीं है। जहां अव्यवस्थित नहीं है कुछ भी, व्यवस्थित है तो व्यवस्था की करीब कोई आवश्यकता नहीं। नीचे व्यवस्था की आवश्यकता है, तो राजा ने कहा अब ये पर्व के दिन है, इन दिनों में आप लोगों को प्रभु को स्मरण में लाना है, अपने कर्तव्य में क्या क्या कमी होती है उनको कमी को दूर करने का प्रयास करना है। पुराण है, स्वाध्याय है, जाप है, विधान है, तत्व चिंतन है, मौन है, ध्यान है, सामायिक है, सब कुछ करना है। लेकिन यह ध्यान रखना सब अपने अपने देवताओं को याद करते हुए भी मूल देवता को भूलना नहीं। क्या है कहा कि 8 दिन में यहां पर किसी भी जीव का वध नहीं होना चाहिए और उसका भक्षण नहीं होना चाहिए। हो गया ये ध्यान रखना, सुन लिया तो फिर ये आदेश है वह व्यक्ति बच नहीं सकेगा। ये कौन सा पर्व आ गया, ये कौन सा पर्व आ गया, बाकी तो सब ठीक है। किसी के द्वारा मान लो भूल से वध हो गया तो भूल से कैसा वध हो सकता है।
दूसरे का वध भूल से हो सकता है तो दूसरे के द्वारा आपका भी वध भूल से हो सकता है।
जब हम छोटे थे उस समय शिक्षा दी जाती थी, कभी कभार चलते समय कहीं किसी को पैर थोड़ा सा भी लग गया, खबरदार, ये ध्यान रखना, उसी समय उसके पैर पकड़ करके यूं लगा देना, नहीं लगाता तो ध्यान रखना, भूल से हो जाए तो भूल से यूं कर दो, भूल तो हो गए तो भूल भी कर दो, लेकिन करना आवश्यक है। कोई भी पदार्थ पैरों में नहीं आ सकता। ये क्या सिखाया गया है? ये सिखाया गया है नीचे देख करके चलो तो आप गिरोगे नहीं, और गिरी हुई कोई वस्तु है तो गिर जाए। दो बातें हैं, इसलिए आप गिरोगे नहीं, गिरी हुई वस्तु मिल जाएगी, ये लाभ है, ये इरापथ शुद्धि। बच्चों को, हाँ बिल्कुल, वह बच्चों सीख जाएंगे तो जीवन के अंत तक वह भूलेंगे नहीं। मूढ़ वर्षद बुद्धि मूढ़ वर्षद वर्ग, 3 साल तक जो संस्कारित किया गया है वह 100 वर्ष तक संस्कार जीवित रह जाता है, और यदि वह जीवित रह गया तो अगले जीवन में भी पहुंच जाता है। इसलिए इन दिनों में ये काम करना है, लेकिन ये नहीं करना, जो काम करने के लिए कहा गया उसमें कमी प्रतिशत संभव है, लेकिन जो नहीं करने के लिए कहा गया है उसमें 1 नंबर भी चूक नहीं सकते। सब लोग जैसे आपका आदेश है, आत्मा की बात चालू हो गई, आत्मा के पास क्षमा धर्म है, आत्मा के पास मार्ग धर्म है, आत्मा के साथ शौच धर्म है, आत्मा अनादिकाल से अज्ञान के कारण ऐसा कार्य करता आया है, और उस अज्ञान को दूर करने के लिए गुरुदेव कहते ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरुदेव कहते हैं कि संसारी प्राणियों के लिए 2 आंखें तो हैं, इन आंखों के द्वारा पराये पदार्थ दिखता है, और इन 8 दिनों में पराये पदार्थ वो नहीं, भीतरी आंख को खोल लेना जिसके माध्यम से भीतरी प्रभु होनहार वह दिखते हैं, उसका श्रद्धन करना, और बाहरी भगवान वो भी देखने में आ जाते हैं। ये 8 दिनों में जिनको आप प्रभु होने की संभावना कहते हैं वह दिख सकते हैं। प्रत्येक के पास प्रभु बनने की क्षमता है, कितना महत्वपूर्ण है। चींटी के पास भी प्रभु बनने की क्षमता है, खटमल मच्छर के पास भी प्रभु बनने की क्षमता है, गैया भैंस और ऊंट के पास भी प्रभु बनने की क्षमता, बिल्ली चूहा चीते इनमें भी प्रभु बनने की क्षमता है। क्षमता यह व्यापक तत्व है, शक्ति प्रत्येक के पास विद्यमान है। जैन दर्शन कहता है कोई भी जीव हो वह प्रभु बनने की क्षमता रखता है, उसका आदर चाहिए, उसके प्रति विनय चाहिए, उसके प्रति अनुकंपा चाहिए, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए जैसे अपने अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। सम्यक दर्शन इम्पॉसिबल, इसके बिना अस्तित्व गुण वही है जो प्रत्येक के पास जो अस्तित्व है, जैसे आपके पास है वैसे ही उसके पास है। ऐसा नहीं कि आप करोड़पति है इसलिए वह लखपति है या हजारपति है, ऐसा नहीं। आत्मा के अस्तित्व के बारे में प्रतिशत समान है सब लोगों के पास, क्षमता प्रभु बनने की सबके पास क्षमता एक है। जीव जीव के प्रति छोटा बड़ा न माने, इस प्रकार की मान्यता आ जाए तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य और गौरव अपने आप ही आने लग जाता है। जैसे हम अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं उसी प्रकार वह भी
अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, जिस प्रकार हम अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं उसी प्रकार वह भी जीवित रहना चाहता है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हम कुछ सामग्रियों का संपादन करके उसको उपयोग में लाते हैं उसी प्रकार वह भी कार्य करता, उसके बीच में यदि व्यवधान हम कर देते हैं तो उसकी तरफ से हमारे जीवन के बीच में भी व्यवधान आ सकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम अपने ऊपर डिपेंड होने के उपरांत भी दूसरा भी अपने आप के ऊपर डिपेंड होगा। स्वयं सेवक, ये स्वयं सेवक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी क्या होता, स्वयं सेवकों की मंडली के कारण अव्यवस्था फैल जाती, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है और स्वयं की सेवा तो नहीं कर पाते और वह सभा के द्वारा ही संचालित वह स्वयं हो जाते हैं। वह यदि लाइन पर खड़े हो जाए तो कुछ आवश्यकता नहीं। स्वयं सेवक का अर्थ ही यही कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की सेवा करे, सबसे महत्वपूर्ण है ये। व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, 16 स्वर्ग तक स्वयं सेवक है ही नहीं और इसके उपरांत स्वयं सेवक है तो वहां पर हा हुल्ला या हुल्लड़ नहीं है। 16 स्वर्ग तक वह सिवाय हो हुल्लड़ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। 10वीं व्यक्ति मिल जाते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, फिर माइक लाओ वो लाओ ये लाओ सब कुछ कर लो, कुछ भी नहीं होता। वो 10वीं व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 20,000 के लिए भी अक्षम हो जाते, उनको संभालना है क्योंकि स्वयं से उनको आप नहीं संभाल सकोगे, वो स्वयं तो संभलेंगे नहीं, तो कौन संभले, भगवान मालिक से संभल नहीं सकता। तो 20 व्यक्ति नहीं 20,000 व्यक्ति भी रह सकते हैं, पूरी प्रजा अपने आप में लग गई। राजा का आदेश है और कितना बड़ा अवसर मिला है आत्मा की बात करना है। अस्तित्व गुण यह दार्शनिक है और अस्तित्व अपने पास अपना है तो दूसरे के पास उनका है अपना है। हम अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को नकारना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके लिए आप दूसरे हो जाते हैं तो आपके अस्तित्व खतरे में आ जाता है। खतरा किसी को नहीं लेकिन दृष्टि में खतरा उतर करके आ जाता है। आत्मा की पहचान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, यह सब क्या है, यह ऐसे प्रश्न है बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए पसीना ला देता। हम दूसरे की सुरक्षा की बात करते हैं, हम अपनी अपनी सुरक्षा करने, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी ने एक बात कही थी, याद होगी आप लोगों को क्योंकि गांधी जी की परंपरा आप लोगों ने चलती है अभी भी। उन्होंने ये कहा, भारत को अभी लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र होने के उपरांत लोकतंत्र ही आने से कोई नियम नहीं है, देश को स्वतंत्रता मिलना चाहिए ये उनका शर्त था। जिस साधन के माध्यम से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिला दी इसके उपरांत उन्होंने कहा कि भारत के पास इतनी क्षमता नहीं कि वह लोकतंत्र का अनुभव कर सके, इसके लिए थोड़े बहुत जैसे छोटे बच्चे हैं आपके यहां, कुछ बड़े भी बच्चे हैं जो समझते हैं, बड़े समझते हैं छोटे नहीं समझते हैं। रसोई घर में छोटे बच्चों को नहीं भेजा जाता, भोजन करने के लिए तो बुलाया जा सकता है, अकेले उनको नहीं भेजा जाता। नहीं, छोटे बच्चे तो यहां पर होंगे, क्यों नहीं भेजा जाता? उनको कह दिया था कि उसने ये रखा उसने ये रखा उसने ये रखा और निकाल करके खा लेना और पेट भर लेना और पुनः उसको बंद करके लग देना, फिर आ जाना, आ जाना ये दिन करके देख लो क्या कर देता है। दूध में वहां पर दूध में मीठा ले लेना, वहीं पर घी है उसको भी ले लेना, तो फिर वह दूध ने पीता और बूढ़े ने घी डाल लेता है और वही खा खा करके आ जाता है। मां जाकर के देखती है देखो क्या खाया जो आपने कहा था, रोटी कितनी खाई, रोटी तो खाई नहीं जा रही थी, फिर क्या खाया, चुप, क्यों नहीं बताते, बता दें तो पीटे पिटाई होगी। जाकर के देखती है न रोटी न खिचड़ी न भात और दाल कुछ भी नहीं खाया, और इधर देखते ही तो वो खाई, जूरा और घी खा करके भाग गई। जब बीमार पड़ता है तब उसे याद होता है, देखो उस दिन खाया था, अब 10 दिन खा नहीं सकोगे, अब अवसर खाओ, दवाई लू, पेट का क्लीनिंग होगा। इसीलिए भारत को कहा था गांधी जी ने, इसको अभी लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में बच्चे कैसे कहते हैं, जितने भी बच्चे हैं, मान लो 8-10 बच्चे हैं और पिताजी और माँ भी है, माँ पिताजी क्या बेटा हम सेपरेट रहेंगे, हम अलग रहेंगे, किससे अलग रहेंगे, भाई भाई से, हाँ फिर इसके उपरांत माँ और पिता किसके पास रहेंगे, 7-8 व्यक्ति है, कोई भी किसी के पास रहेंगे, उनका बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सेपरेट का अर्थ क्या होता है, भाई भाई से नहीं, भाई भाई से सेपरेट रहेंगे लेकिन माता और पिता से भी सेपरेट रहेंगे, सब धर्म कर्म से सेपरेट। स्वच्छंदता आती है जब ये जात हो जाता है कि आई हुई आपदाओं को किस ढंग से झेला जाता है, कोई पास नहीं आता है, तो फिर देखो मुसीबत की घड़ी आ जाती है। इसलिए आदेश दिया गया है कि नहीं ये नहीं करना, किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे ढंग से चला। लेकिन ये प्रातः काल की बात है, एक व्यक्ति ने आकर के कहा प्रभु हाँ क्यों क्या हो गए, एक अपराध बन पड़ा है, किससे अपराध तो बन पड़ा है और एक जीव की हत्या की है, जीव की हत्या की मेरे आदेश के बावजूद और इन पवित्र पर्व के दिनों में, किसने किया, चुप शांति से, तुम्हारे से बन पड़ा क्या जी, नहीं तो बोलता क्यों नहीं जी, किसके द्वारा हुआ, बहुत कठिन, जल्दी बोल, पर्व के दिन चल रहे हैं, जिसने किया उसको तो वही आदेश तो दिया गया है, उसी को पूर्ण करना है जी, किसने किया बता, नहीं बता पा रहा, राजकुमार जी ने, राजकुमार हमारे बेटे ने किया जी, जहां आदेश आ गई वो यहां रहा आ नहीं सकता, आदेश आदेश, उसको बुला दे, जो मातंग चांडाल जिसको बोलते, या यूं कहना चाहिए उस दंड दिशा देने के लिए नियुक्त किया गया है, उसको बुला ले और उसको ले जा गया और मातंग के सामने किया कि ऐसा ऐसा है, उससे पहले ही उसने सुन लिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है,
कि ऐसे ऐसे प्रभु ने आदेश दिया है और उसको सूली पर चढ़ाना है। तो माखन कह देता है कि आज तो मैं चढ़ा नहीं सकता क्योंकि आज तो हमारी चतुर्दशी है। चतुर्दशी आदेश है प्रभु का और वहां पर उसको समाप्त करना सूली पर चढ़ाना है और इसी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हो, पर आज यदि नहीं आते तो बहुत गड़बड़ होगा। भैया आज तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मैं किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता क्योंकि उनके आदेश में तो मैं 365 दिन रहूंगा, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन एक महीने में दो दिन तो ऊपर के प्रभु के अंदर में नहीं रहूंगा क्योंकि राजा का यह आदेश है। तो महाराजा का आदेश यह है कि कम से कम दो दिन के लिए हिंसा छोड़ देना, एक महीने में 15 दिन में एक दिन, ये नियम ही है, प्रतिज्ञा है। और छोटे व्यक्ति के द्वारा जो आदेशित है उसको तो हम पालेंगे, लेकिन बड़े व्यक्ति के द्वारा जो आदेश है उसको भी तो हम पालेंगे। और 365 ही दिन है, एक महीने में 30 ही दिन है और 15 दिन में 15 ही दिन है, पक्ष में एक 14 के दिन तो हम नहीं कर सकते। आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी आप लोग जानते हो क्या? नहीं, संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे ये चलता है और 1 2 3 4 ये 30 तारीख तक चलता है। कैसे कहें, चतुर्दशी है, पूर्णिमा के पूर्व दिन अथवा अमावस्या के पूर्व दिन। वैज्ञानिक तत्व भी इसमें बहुत सारे हैं, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। जब कहा गया तो वह पुनः वापिस आ गया। प्रभु वो कहते हैं कि आज चतुर्दशी के दिन वह एक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऐसा, अरे उसने तो मेरे आदेश का तो कर ही दिया और इसने भी कर दिया, जा इन दोनों को इसी समय दोनों को ही तो एक एक बोरी में बंद कर दिया गया, जा तालाब में फेंक दी जहां पर बहुत बड़े झील जैसे तालाब है, मगरमच्छ वगैरह रहते हैं, उसमें फेंक दिया गया। राजा की आज्ञा, राजा का आदेश, फेंकते ही एक बोरी को जो राजकुमार था वो ऐसी गायब हो गए तो सब चले, दूसरी बोरी को तो फेंक दी गए, फेंकते ही उछल करके ऊपर आ गए और वो बोरी ने कुछ भी नहीं है और वहां पर कमल का सिंहासन हो गया और आसन उसके ऊपर है, उसके ऊपर उसको बिठा दिया गया और देवों के द्वारा परिक्रमण करने लगे और वह आरती उतारने लगे। यह दृश्य देख करके जाकर के आकर कह लेता कि महाराज क्या हो गया, कर दिया काम तो कर दिया, लेकिन बड़ा क्षोभ की बात है। क्या बात है? वहां पर बहुत ऐसे ऐसे देव लोग आए हैं और वो चांदा में उनके चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं और कमल के ऊपर उनको बिठा दिया गया और उनकी आरती उतार दी जा रही है और जो जो कर लगाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सारे सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, लेकिन अब क्या होता पता नहीं, क्योंकि वह यदि आदेशित कर देगा तो हम सब लोगों का, क्योंकि मगरमच्छ ऐसे नहीं है महाराज, तो वहां पर कोई बचने वाला नहीं और वो शांत बैठे हैं, अभी शांत बैठे हैं, लेकिन अब क्या करें, हम जाकर के विनती कर रहे हैं तो संभव है कुछ हो सकता है। ऐसा हुआ राजा, ऐसा ही हुआ।
चल।
यदि ऐसा हुआ है तो चल।
जा करके उन्होंने सर्वप्रथम दंडोत किया और माफी मांगता है, लेकिन वह कहता है कि चूंकि राजा की आज्ञा का यदि उल्लंघन हो जाता है तो प्रजा को यह संरक्षण का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मुझे करना पड़ा है। तो सुमातम ने कहा कि आप जैसे राजा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उसी समय राजा ने कहा, मेरे राज में आप जैसे प्रतिज्ञाबद्ध ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। ये सारे ऊसई वाले ऊपर वाले भीतर से इन लोगों के लोभ कभी भी नहीं छूट सकता। यदि चतुर्दशी के दिन कम है तो त्रयोदशी के दिन 3 बार और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन 4 बार, मतलब उस दिन जो 2 बार पूजन करना था वो इधर में और उधर में और उस दिन का सब निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं कसर निकाल दिया। पता ही नहीं, अरे बिकने वाले जितने लेने वाले वो सब यहां पर बैठे हैं, गोवटगिरी में तो बिकेगा काम, लेकिन उनको आश्वासन बिल्कुल विश्वास रहता है। जो ही भाद्रपद समाप्त, सभी भद्रता समाप्त, और ऐसे टूट पड़ते हैं।
नहीं तो क्या तो हमारे हरि की सुखा करके अब कितने चिप्स आ गए हैं, सब चिप्स, आलू के भी चिप्स हैं, केले के भी चिप्स है, टमाटर की चिप्स है, आम की चिप्स है, इतने चिप्स हो गया है कि बस सूर्य में सूर्य की किरणें भी नहीं है तो भी लाइट की बिजली जला करके हीटर के माध्यम से भी जला ये सुखाते होंगे लोग, और सब पेट में बंद कर देंगे। ये सब क्या है हमें समझ में नहीं आता। आज का नव युवक जो है इन सबको देख करके कहता भी खाना ही है तो इतने डबल खाने के पीछे से थोड़े थोड़े खा लू, क्या बात हो गई, ये दिखावट क्यों, ये प्रबंध क्यों, एक रामलंग क्यों, ये लोग नालच के मिटाएं और हम करते चले जाएं। वो राजू ने कहा कि मेरे राजकुमार ने आदेश होने के उपरांत भी इनको तो करना ही नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया, मेरे राणा ने गया आदेश तो आदेश। इसको बोलते हैं राजा, इसको बोलते हैं राजा कोई पक्षपात अपनत्व नहीं। जो शासन में बन जाता है उसी की रक्षा करना, और जो शासन में नहीं बनता अपना परिवार का सदस्य हो, राजा का परिवार वो सदैव कुटुंबक वाली बात होती, पूरा पूरा देश होता है उसका कुटुंब, उसका परिवार, उस परिवार का संरक्षण करना होता। राजकुमार यदि इस कानून का अनुपालन नहीं करता तो उसको भी वही दंड मिलेगा। लेकिन आज बहुत बड़ा कठिन है, सत्ता की भूख, अज्ञान और पैसा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से दिल और दिमाग दोनों ही खराब हो जाते हैं। मनुष्य के पास दिल और दिमाग ये दो हैं। दिल और दिमाग दो क्यों कहा, दिमाग विज्ञान के अनुसार माथे में ही बताते हैं, और दिल कहां है, दिल्ली में नहीं, दिल यहां है और इसी के ऊपर मस्तिष्क, यहां फितूरी है, यहां आस्था है, यहां फितूरी हो जाए यहां अविश्वास होने लग जाता है, और यहां पर अविश्वास नहीं विश्वास है, यहां फितूरी हो नहीं सकती। उस राजा को यह विश्वास रहता है, यहां विश्वास रहेगा तो निश्चित रूप से दिमाग में इधर उधर की बात नहीं आएगी। राजकुमार को यह विश्वास था, राजा की आज्ञा दूसरों के लिए है, आदेश राज परिवार के लिए नहीं, ऐसा विश्वास था। मैं तो मर ही नहीं सकूंगा। लेकिन राजा को पिता को यह विश्वास नहीं था कि मेरा लड़का राजकुमार इस प्रकार की हत्या कर देगा, वध कर देगा। जो ही उसने सुन लिया, अरे मेरे खून ने आज मेरे लिए दगा दे दिया, धोखा दे दिया, उस सड़ा गला खून को तो बाहर निकालना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार से आगे किसी अंग में उस प्रकार की खराबी न आए। डॉक्टर के पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि इस अंगूठे में बहुत दर्द है, बहुत वेदना है, क्या हो गया आप देख लो। उन्होंने देख लिया, देख करके कहा ये अंगूठा गया, इसको तो है निकाल करके ऑपरेशन कर लेना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब जितने पैसे मांगो उतने में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे देख करके, ठीक नहीं लगेगा, शोभा पैर के समाप्त हो जाएगी, आप बचा सकते हैं। लोभी व्यक्ति के कारण सामने वाले वैद्यराज और डॉक्टर के ऊपर प्रभाव तो पड़ ही जाता है, पानी तो आ ही जाता है, उनको विश्वास था। नब ये इनके पास विश्वास नहीं तो मैं क्या करूं, पैसे तो निकाल ही दू, निकाल लिया, पैसा ले लिया, कह दिया हाँ ठीक है करते जाओ। 10-15 दिन हो गया, बहुत वेदना है, बहुत वेदना है, बहुत वेदना है, अभी ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। ओहो आगे बढ़ गया, हमने कहा था ना अब तो अंगूठा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, पुंजा निकालना होगा, पुंजा बहुत कठिन हो जाएगा। डॉक्टर साहब किसी भी प्रकार से बचा, अंगूठा तो निकाल दो कोई बात नहीं, पंजा मत निकालो, देख लेते हैं। अंगूठा निकाल दिया और 15 दिन हो गए, अभी दर्द उससे भी बढ़ता चला जा रहा है। आ गया डॉक्टर साहब दर्द तो बहुत है, क्या कर, हमने पहले कहा था ना कोई बात नहीं, पंजा निकालने की कोई आवश्यक नहीं, गोड़े तक पैर को निकालना, वैसा किया कहां से हम चलेंगे, ये कम से कम आप कृपा करो पंजा निकाल दो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मत निकाल। इस प्रकार करता 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 वह आखिर यहां से कमर से ये कहा कि ये करो तो ठीक है, नहीं तो पूरा यहां तक समाप्त हो जाएगा, आप ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे आप कहो, विश्वास रखो, बात मानो। जीवन में इस प्रकार के खतरा कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। राजा और प्रजा का बहुत गठबंधन है, 50 वर्ष आपके गुजर चुके हैं, क्योंकि राजा ही का अर्थ। लेकिन बहुत बड़ी अद्भुत बात यह है, भारत में राजा गायब होने के उपरांत भी राजनीति गायब नहीं हुई, ये क्या समझ में नहीं आता, राजा गायब और राजनीति गायब नहीं। अब वह बहुत पावरफुल है, चाणक्य नीति आदि पल रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा नहीं और चाणक्य कैसे रह गए ये तो समझ में नहीं आ रहा। आज किसी के पास चोटी नहीं है, यही एकमात्र कमी है। चाणक्य ने अपनी चोटी रखी थी और चोटी रखी थी उसमें गांठ बांध करके गांठ रखी थी, वह चोटी की गांठ हमने एक चित्र में देखा था कि बिच्छू के दंत के समान नीम रहता था। प्रतिज्ञा में कभी भी बाधा आ जाए तो उसी समय वो डंक मारने के लिए, उनका ही कहना था जैसे मैं कहता हूं उसके अनुसार चलोगे तो जो अपराध करने वाला राज्य वंश समाप्त होगा, और आराधना करने वाले प्रभु की आराधना करने वाले राज्य का विस्तार होगा। यदि मेरे ऊपर विश्वास है तो आप चलो, नहीं है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। विज्ञान का युग तो आ गया, दिलदार जमाना चला गया है। किसी के पास छाती में इस प्रकार क्षमता नहीं, विश्वास नहीं, हृदय दिमागदार की कोई आवश्यकता नहीं है, दिलदार की आवश्यकता है। आज बहुत कुछ पढ़ लिखे हो गए, हमेशा हमेशा खतरा इस जीव को, जीवात्मा को, ज्ञान से है, विश्वास से नहीं। बिना ज्ञान के भी विश्वास के बल पर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के वह बहुत आगे चल सकता है। दिल होना चाहिए, दिल के माध्यम से ही हम दूसरे के दिल को जीत सकते हैं, दिमाग के माध्यम से नहीं। युक्ति के माध्यम से कभी भी हम विश्वासित पात्र नहीं बना सकते, और युक्ति हमारे पास कुछ भी नहीं है। और भक्ति के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, अपने आस्था के माध्यम से दूसरे को हम समर्पित कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे सामने आ सकता है। यह विश्वास का प्रजा को यह आदेश इसलिए दिया गया है कि स्वप्न में भी हिंसा की ओर नहीं जाना। यदि 8 दिन की वह साधना हो जाती है, बहुत कुछ कर देंगे हम। कितनी प्रजा में विश्वास था, किसी ने कुछ भी नहीं किया, किंतु राजकुमार एक अविश्वास निकला, दगाबाज निकला। और वह क्यों निकला भैया, बात आपको मालूम है? वह मांस का बहुत प्रेमी था, इतना अधिक था वह प्राणों को भी भूल गया, राजा की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। क्योंकि राजा के आज्ञा नहीं रहता तो वह बहुत अच्छा रहता, लेकिन पिताजी के लाड़ प्यार मिलने के कारण वह खो गया अपने विश्वास। लालनाथ बहुओ दोषा, तारनाथ बहुओ गुणा, तस्मात पुत्रम शिष्यम च तारये न तो लालये। जो नीति है ये सर्वत्र इसकी विजय है कि बहुत अब लाड़ प्यार करते हैं तो बच्चों में वह लाड़ प्यार के कारण गुण समाप्त हो जाते हैं। और यदि ताड़न चलता रहता है तो गुण का भंडार वह लड़का बन जाता, संतान बन जाती है। लाड़ प्यार अपने स्थान पर और हुकूमत आज्ञा अपने स्थान पर होना चाहिए। जैसे कुम्हार घड़े को, कच्ची घड़े को भी गोल बना करके और उसको पका करके और उसमें जीवन डाल देता है, जो मिट्टी में पानी घुल जाए तो कीचड़ बन जाए, लेकिन आज जल को धारण करने की क्षमता उस मिट्टी के पास कहां से आए? एक एक ठोकर खा गए, उसमें इस प्रकार की क्षमता आ गई। प्यासा कोई आ जाता है तो उसको प्यास बुझाने की क्षमता उस लहरे के पास विद्यमान, कठिनाई के द्वारा ही आ जाता है। फिर भी जलाएं नहीं तो क्या होगा, यदि मिट्टी को नहीं जलाएं तो क्या होगा? घड़ा नहीं बनेगा तो, घड़ा नहीं बनेगा तो आपका क्या होगा? नल की टूटी खोल देंगे। अभी भी दिमाग से आप सोच रहे, दिल से कहो नहीं। मिट्टी में, मिट्टी को जमाने से ही वह घड़ा बन सकता है। मूक माटी में एक स्थान पर हमने उल्लेख किया है कि वह घड़े को हवा में रखा और अग्नि कहती है कि मैं इनको नहीं जलाऊं, मुझे यहां पर मत लाओ। अग्नि कहती है, ये जलाने वाले कुंभकार है उनको कह दी, मुझे यहां पर मत जलाओ क्योंकि इनका जीवन जल जाएगा। बार बार कहने के उपरांत तो फिर वहां के घड़े कहने लग जाते हैं, हम तो कच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं, हे अग्नि देवता आप हमें जल्दी जल्दी पकाओ, और कुछ लायक बना दो। नहीं, हमें आप जला नहीं रही हैं, किंतु हमें आप जला रही हैं। हमारी बात, हमारी प्रार्थना को मंजूरी दे देना चाहिए। हे अग्नि देवता, तुम हमें जला दो तो हमारा जलना ही हमारा जलना है, और वह बहुत दिन तक जलना, हमारा जलना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप अपने कर्तव्य करो, और ऐसा नहीं करना देश में गिर जाओ और हम अधकच्चे रह जाएं। हाँ, वो कहते हैं अग्नि की परीक्षा क्या है, चांदी सी राख। अग्नि की परीक्षा क्या है, चांदी सी राख। और अग्नि यदि पूरी नहीं जलाती है तो काले कोयले बनते हैं, फिर चांदी की राख नहीं आएगी। इसी प्रकार आप पूरे अपने कर्तव्य को करो। आप लोगों का भी कर्तव्य था किस ढंग से आप चलाते भारत को, लेकिन नहीं चला पाए, अधकच्चे कोयले जैसे रह गए, अंगार नहीं बन पाया, चांदी की राख चमक नहीं आ पाई, और वह धुआंदार आंखों में सब पानी पानी आता चला गया। उस कच्ची लकड़ी जैसे जैसे धुआं निकलता है, उसी प्रकार आज हवा में भीतर से वही वासना, वही स्वच्छता, वही अनेक प्रकार की कषाय कामिष्ठा आदि आदि चल रही है, हमारा जीवन का उद्धार नहीं हो पाए। राजा होना तो ऐसा चाहिए किसी को भी वह न छोड़े, लेकिन किसी को भी वह न छेड़े, अपनी तरफ से छेड़े नहीं, ऐसे आदेश दे, ऐसे अनुशासन दे जिसके द्वारा वह शासन आत्मानुशासन की ओर आ जाए। शासन का कभी अभिमान नहीं होता राजाओं को, क्योंकि वह शासन कर्तव्य का एक कदम होता है। इस प्रकार कहेंगे तभी वह काम हो सकता है। मिलिट्री एक एक 500 की मान लीजिए एक कतार है, पंक्ति है, तो एक बार में लेफ्ट कहे तो लेफ्ट ही होता, राइट नहीं होता। राइट की जगह राइट ही होना चाहिए, लेफ्ट नहीं। यदि लेफ्ट की जगह राइट हो जाए तो वहां उधर से राइट हो जाता है। आवाज सुन करके वह जान लेता है कि कौन सी पंक्ति में, कौन सी लाइन में, कौन से नंबर के व्यक्ति ने गलती खाई, उसी को वहां से निकाल दिया जाता है। ये कड़ा शासन है। मोक्ष मार्ग तो इससे भी और कड़ा शासन है। महाराज, मोक्ष मार्ग की कुछ बातें बता दूं। भैया, मोक्ष मार्ग की बात है क्या, अभी मुंह में रहते हुए भी कुछ पर्व के दिनों में तो कम से कम वरकार दूर होना चाहिए। इस आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम यह निकला, उस राजा के कुमार को भी समाप्त कर दिया, और वह चला गया नीचे। लेकिन जिस बोरी में बंद, जिस तालाब में डाल दिया गया, वहां पर वह ऊपर उठ करके कैसा आता है, रक्षित रक्षति, जो रक्षित है, जिसके द्वारा अहिंसा धर्म सुरक्षा को प्राप्त है, उसकी सुरक्षा कहीं भी वह चला जा, कोई भी नहीं उसको बाल बांका नहीं कर सकता, उसको कोई भी बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास धर्म है उसको कोई बाधा नहीं डाल सकता। दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए तो कुछ नहीं, वह विजयी बना रहेगा। और मातंग की तो पूजा हो गई और राजकुमार की तो यह दशा हो गई। राजा कपता था हमारे ऊपर कहीं वार न हो जाए। उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं, आपने बहुत न्याय किया, आपने न्याय किया। ये बता दो, राजा ने कहा कि आपने आज आज्ञा क्यों नहीं मानी। उन्होंने बताया, जैसे आपने आज 8 दिन के बीच में आदेश दिया, उसी प्रकार किसी एक संत के पास मैं गया था, और आपके राज्य में वो संत रहते हैं, संभव है आप भी गए होंगे। और उन्होंने कहा कि कम से कम तुम प्रतिदिन यही काम करते हो तो 14 के दिन तो किसी का वध नहीं करना, बहुत अच्छी बात है, हम करेंगे। एक वर्ष में 25 पक्ष हो जाते हैं। एक वर्ष में कितने पक्ष? 25, हाँ वही 24-25 हो जाए। इतने हो गए, इतना ही त्याग सही। 24 भगवान के नाम से 24 पक्ष 24-14 पालन करो तो पूरा क्या पालन करना, वो 1-2-14 के उपरांत ही उनकी परीक्षा हो गई। लेकिन परीक्षा पास उसने कितने नंबर लेकर के ले, आप लोग नंबर की ओर देखते हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है। नंबर की ओर नहीं, पास तो पास, 33 में नहीं। आप लोग 33 नंबर लेकर के पास हो जाते हैं तो अखबार में नई दुनिया में नहीं, पुरानी दुनिया में भी आ जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है 67 नंबर में हम फेल हैं। उस समय जब मैं पढ़ता था उस समय 35 या 36 नंबर चाहते थे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, 3 नंबर कम लेने के उपरांत भी वही दर्जा आपको आज प्राप्त है। सुनने में आता है कि अब मिडिल तक कोई परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 7वीं कक्षा तक या 8वीं कक्षा तक परीक्षाएं नहीं होंगी, आपकी परीक्षा बाद में होगी, ऐसा सुना था। हो गया क्या ऐसा? अभी नहीं हुआ था, होने की संभावना है, माला फेर लो तो हो सकता है। परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कैसी बात आती है हमारे दिमाग में, हमें नंबर पूर्ण करने के विचार करना चाहिए। उस दिन उसने कहा कि 14 के दिन मैं मारूंगा नहीं, वध नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, मेरा वध हो जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन मैं प्रतिज्ञा का वध नहीं कर सकता। मैं प्राण ले, मैंने ले लिया तो प्राण को छोड़ूंगा नहीं। प्राण अनेक बार मिले और निकल चुके हैं, क्या है ये ताकत है, एक विश्वास है अपने यहां, विश्वास और श्रद्धा ये चलते हैं। फिर इसके साथ साथ आत्मविश्वास एक और चलता है, इसको इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। भेद अलग और कॉन्फिडेंस अलग है। यह अपने आप में एक बहुत मजबूत शक्ति है। उनको इतना विश्वास था, आत्मविश्वास था, कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें मेरा भला ही रहेगा, यह विश्वास किसको हो सकता है? कमजोर हृदय वालों को नहीं हो सकता। दिमाग जिसका ज्यादा चलता है वह बहुत खतरा माना जाता है। ज्यादा नहीं चलना चाहिए, उतना ही चलना चाहिए। ज्यादा दिमाग चलता है तो रक्त की गति में अंतर आ जाता है, ऐसा सुना हमने, ठीक है ये? ज्यादा दिमाग चलता है तो वह खून की रफ्तार में, खून की गति में अंतर आ जाता है, उतना ही दिमाग चलाना चाहिए। और आज के व्यक्तियों का दिमाग इतना चलने लगा पूरा पूरा लोड हृदय के ऊपर पड़ जाता है, हार्ट अटैक। दिमाग अटैक नहीं होता, हार्ट अटैक। खून की गति इतनी तेज के साथ चल रही, आपको सोचना कम, विश्वास ज्यादा करना चाहिए। विज्ञान कहता है जो जितना ज्यादा सोचेगा उसकी खून की मात्रा उतनी ही जलेगी ज्यादा। कम खून जलना चाहिए, और ज्यादा जो सोचता है उसकी नाड़ी के फड़कन ज्यादा हो जाते हैं,
और जो ज्यादा उसको शांत कर देता है और ध्यान करता है, स्वस्थ हो जाता है, उसकी नाड़ी हमेशा हमेशा मध्यस्थ चलती है, उसमें उदीर्णा नहीं होती है। मोह राग द्वेष विषय कषाय आदि आदि चिंताओं के कारण दिमाग बहुत परिश्रांत हो जाता है, तो वो सोते नहीं, मूर्छित हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति सोता है, लेकिन उसको ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दिमाग इतना विश्रांत हमेशा हमेशा रहता, विश्वास के साथ चलता। दिमागी व्यक्तियों को इसीलिए मिलिट्री में भर्ती नहीं कराई जाती, ये देश को डुबो दे खतरा है। दिलदार व्यक्तियों को हम करेंगे भर्ती कराएंगे, हमें भी अब सोचना पड़ेगा। हमें भी अब सोचना पड़ेगा। दिलदारों की भर्ती ज्यादा होनी चाहिए, जो टाइगर हिल पर भी जाकर के अपना अपने आत्मा की रक्षा वही कर सकता है जिसको आत्मविश्वास होता है, शरीर पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास। कई लोग मुझे कह देते कि महाराज आप ध्यान सिखाते क्यों नहीं। भैया आप तो ध्यान कर ही रहे हैं, तो और क्या सिखाएं। चलते समय आपको ध्यान है, उठते समय आपको ध्यान है, यहां पर आते समय भी ध्यान है, अभी बैठे बैठे भी देख रहे हैं 4:30 तो बज गया, महाराज कब छोड़ेंगे क्या पता, ये भी ध्यान है। ध्यान कब आपका छूटा है, लेकिन जिस ओर आपका ध्यान लगा है उधर से मैं हटाना चाहता हूं, और एक बार हट गया मैं हटाना चाहता हूं हटा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के पास अपनी शक्ति हुआ करती। यदि आप चाहेंगे तो आपका जो ध्यान लगा है वह हट सकता है। और ध्यान किससे लगाया जाता है आपको मालूम है, ध्यान तो दिमाग से लगाया जाता है, और जिसके पास विश्वास है इसमें सुख नहीं है, दिमाग को कह देता है उधर न लग इधर लग जा। यदि वह विश्वास हो जाता तो दिमाग को यहां से हट करके यहां पर आना पड़ेगा, लेकिन दिमाग को समझाने वाला बहुत बहुत आगे का व्यक्ति हुआ करता है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, आप अपने दिल को कह दो कि हे दिल मन को थोड़ा सा समझा दे, और दिल यदि पक्का हो जाता है तो फिर मन को उसके पीछे ही होना पड़ता है। नहीं तुम्हें सारे सारे सुनने में आए हैं, 80% मांस का निर्यात भारत से होता है, केवल 20% ही यहां पर काम में आता है, तो 80% जो आता है जाता है उसको व्यवसाय क्यों किया जा रहा है, ये मेरा कार्य है। मैं 20 के लिए समझा सकता हूं लेकिन 80 के लिए नहीं समझा सकता, क्योंकि 80 व्यक्तियों ने इसको इस मात्रा को व्यवसाय का रूप दे दिया, और जहां पर 2% मिल जाते हैं फिर तो क्या कहना, पैसा ऐसा है कि वह सब कुछ कर सकता है, दुनिया क्या नहीं कर सकता। तो एक बार भगवान के दरबार में सवा लगी थी, वैसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबने अपने अपनी मांग कर दी, सब चले गए। एक बनिया खुरा था वो दिखा, उनको क्या चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बनिया हूं, जहां कहीं भी आप भेजो भेज दो, 2 रुपए मिलना चाहिए बस, नरक भेज दो कोई बात नहीं, 2 रुपये मिलना चाहिए मुझे। ये क्या चीज हमें समझ में नहीं आता, 2 रुपये क्यों मांगते हैं, अपने आप मिल जाएगा। जो अहिंसा के माध्यम से चलता है क्या उसके लिए रुपये की कमी पड़ती है, नहीं पड़ते। लेकिन एक विश्वास ही कहीं धारणा बनी हुई है, गांधी जी ने कभी भी मांस निर्यात के लिए
व्यवसाय का धंधा आप लोगों के लिए नहीं सिखाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समूह में भी मांस का निर्यात नहीं होता था। मुगल साम्राज्य के इतिहास हम पढ़ते हैं, बाबर हुमायूं से लेकर के अकबर इत्यादि के तक किसी ने भी मांस निर्यात की बात नहीं कही, बल्कि यहां तक कहा यदि हिंदुस्तान को प्रभावित करना है तो यहां पर गो हत्या बंदी को ध्यान में रखना, अपने अपने राजा ने अपने अपने पुत्रों के लिए यही आदेश दिया था और उसका पालन किया तब वो राज कर पाए। यहाँ के जीवन की रक्षा के बारे में उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से की है। आप लोग आज तो स्वतंत्र हैं कि करोड़ों जानवरों का वध होकर के बहुत कम पैसे के लिए इतनी वध कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि वध करना धर्म ही नहीं, लेकिन आप कम से कम व्यवसाय के लिए तो मत करो। तो मैं खाने के लिए वर्णन नहीं कर रहा, जिस व्यक्ति की चित्त वृत्ति में ये धारणा बन गई है कम से कम 80% कम हो जाएगा तो संभव है। मैं अगले कदम में कहूंगा भैया 80% खाली हो गया, 20% भी क्यों रखते हो, इसके बिना भी काम चल सकता है, ऐसा बाद में कहूंगा। लेकिन यह भी एक युक्ति है कि जो व्यक्ति 80 को कर लेगा तो 20 को निश्चित रूप से कर लेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लोग इसके लिए यदि तैयार हैं तो कम से कम ऐसा कोई भी जैसे मातंग के समान विश्वास और दिलदार व्यक्ति खड़ा हो जाए और राजा के लिए कह दे कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप अब जा करके वोट डालेंगे, नहीं डालो नहीं कह रहा हूं, डालना चाहिए, लोकतंत्र है, क्योंकि अच्छी चुनाव के लिए सब लोगों को डालना चाहिए।
वंदना के स्वर जब अंतर से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुड़ी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और शूद्र से विराट तक कि अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं, तभी तो ऐसा लगता है कि हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश गागर नहीं होता, होते हैं हजारों संत इस दुनिया में, हर संत विद्यासागर नहीं होता।
भव्य जीवन को तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज सूर्य प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का करोश मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर, दूरभाष 545744।
Thank you.
रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तम घना अज्ञानता का छारना है गर्व, आज विद्या सागर जैसा संत चाहिए।